ये कैसा स्पर्श है? वहीं अरमान अब पूरी तरह से आस्था की सिचुएशन समझ रहा था, लेकिन वो चाहता था कि आस्था खुद आगे बढ़कर उससे मदद मांगे। इसीलिए अरमान ने ऐसा दिखाया मानो जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। जल्द ही अरमान ने वहां जितने भी नौकर चाकर मौजूद थे उन सबको कड़क आवाज में इंस्ट्रक्शन दिया, यहाँ की साफ सफाई अच्छी तरह से करो, उसके बाद ही कोई यहाँ से बाहर जाएगा। ये बोलते हुए अरमान आगे बढ़ा और बाहर की ओर जाने लगा। वहीं आस्था अरमान को रोककर मदद मांगने के बारे में लिए सोचती ही रह गई थी, लेकिन तब तक अरमान रघुवंशी मेंशन से बाहर निकलने लगा। ये देखते ही आस्था ने हिम्मत की और अंश को गोद में उठाया और एक हाथ से अपनी साड़ी संभालते हुए वो सीधा बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन अचानक ही उसका सिर जोरों से चकरा गया और वो खुद को संभाल ही नहीं पाई। आस्था पूरी तरह से अंश को लेकर गिरने ही वाली थी कि तभी अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। आस्था की आंखें बार बार खुल और बंद हो रही थी। उसे ऐसे देखकर अब अरमान एकदम से दंग रह गया। उसने गुस्से में सोचा, ये लड़की पागल है क्या? ये इतनी जिद्दी क्यों है? क्या ये मुझसे मदद नहीं मांग सकती थी? फिलहाल अरमान ने आगे बढ़कर आस्था को अंश समेत अपनी गोद में उठा लिया। आस्था और अंश को उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अरमान बॉडी बिल्डर था और जब से उसकी याददाश्त गई थी तब से उसने खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना लिया था। वो आराम से दो लोगों को एक साथ उठा सकता था। फिलहाल अरमान आस्था और अंश को लेकर जल्दी ही सीढ़ियां चढ़ता हुआ उनके कमरे में आ पहुंचा। वहीं दादाजी अरमान को आस्था के साथ देख चुके थे। उन्होंने मन ही मन आह भरी और सोचा, आस्था के आसपास होने से अरमान के इमोशंस एक बार फिर बदलने लगे हैं। भले ही दुश्मन कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन प्यार करने वालों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। भले किसी दुश्मन ने मेरे पोते का सुकून छीन लिया हो, लेकिन उसके सुकून की वजह हमेशा आस्था और अंश ही रहेंगे और बहुत जल्द ही वो अपना सुकून वापस हासिल कर लेगा। ये सोचते हुए दादाजी एकदम से मुस्कुरा उठे। वहीं अरमान ने आस्था और अंश को सावधानी से उनके कमरे में लिटा दिया और जैसे ही वो वहां से वापस जाने लगा, आस्था ने नींद की हालत में अरमान का हाथ थाम लिया। अरमान की नजरें एक बार फिर आस्था पर लौटी और उसकी कमर पर जाकर ठहर गईं। आस्था की खुली हुई कमर उसे पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो झुककर आस्था की कमर को चूम ले, लेकिन तभी अचानक अरमान ने खुद ख्यालों को झटका और वो सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया है? मैं किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वैसे भी इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये लड़की तो हमेशा से यही चाहती थी कि अरमान सिंघानिया इसके सामने झुके, इसकी ओर आकर्षित हो और ये इस घर की महारानी बनकर रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी भी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। इसी सोच के साथ अरमान उठ खड़ा हुआ और वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन आस्था की कमर, उसे गोद में उठाना और फिर आकाश, सुमित, ध्रुव का अपनी पार्टनर्स को उठाकर ले जाना, ये सारी बातों के बारे में सोचकर अरमान की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसके दिमाग में ये सारी बातें खटक रही थीं। लेकिन तभी अरमान ने कुछ सोचते हुए आईब्रो चढ़ाई। कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये सारी लड़कियां इस मेंशन से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई क्यों लगती हैं? ऐसा क्या है जो ये सब मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे खुद इसका पता लगाना होगा। वो अच्छी तरह से जानता था कि आकाश और सुमित लड़कियों से हमेशा दूरी बनाए रखते थे, तो फिर अचानक ये लड़कियां उनकी जिंदगी में शामिल कैसे हो गईं? तभी अरमान के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। राधिका का चेहरा और कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में तैरने लगी। उसे एकदम से ख्याल आया, राधिका तो वही लड़की थी जिसकी जान अरमान ने बचाई थी जब सुमित उसे मारना चाहता था। अरमान ने सोचा, शायद इतने दिनों से मैं गुस्से में अंधा हो गया था, इसीलिए मैं उसका चेहरा ठीक से पहचान नहीं कर पा रहा था। अब राधिका के बारे में सोचकर अरमान के सामने उसकी पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। उसने अगले ही पल सोचा, अगर ये वही लड़की है जिसकी जान मैंने बचाई थी, तो ये लड़की सुमित की जिंदगी में कैसे आ सकती है? सुमित तो इस लड़की से सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये सब सोचते हुए अरमान का मन उलझन में था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। डॉक्टर रश्मि तो हमेशा से आकाश को पसंद करती थी। मैं तो रश्मि के दिल की बात बचपन से जानता हूँ। आकाश ने कभी रश्मि की तरफ देखा तक नहीं, तो आज आकाश अचानक रश्मि को इतना करीब कैसे आने दे रहा है? और रश्मि जैसी खुददार लड़की इस तरह से इस मेंशन में कैसे रह सकती है? उसे अब कहीं न कहीं लगने लगा था कि सब मिलकर उससे कोई बड़ा राज छुपा रहे हैं। अरमान ने खुद से कहा, बहुत जल्द मैं सबका सच सामने लाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस लड़की को, जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही है, सबसे पहले मुझे इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालकर फेंकना होगा, क्योंकि जब तक ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी तब तक मुझे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आएगा। मुझे इस लड़की को हर हाल में यहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि इस लड़की के करीब आने पर मुझे अजीब सा एहसास होने लगता है। ये कैसा एहसास है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से इस लड़की के करीब नहीं जाना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ करके इस लड़की से दूरी बनानी होगी, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। अरमान खुद से ही एक जंग लड़ रहा था, और कब ये सब सोचते हुए उसे नींद आ गई उसे एहसास नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह वसुंधरा के चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो प्लान सोच रही थी उसने उसे सीधे अमल में ला दिया हो। वसुंधरा डेविल स्माइल करते हुए खुद से बोली कि बस 3 दिन और, 3 दिन तक मुझे इस घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। उसके बाद इस घर का पूरा नक्शा बदल जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं करके रहूंगी। वीर जो अपनी माँ से मिलने वहां आ रहा था वो वसुंधरा की ये उटपटांग बातें सुन चुका था। वो अचानक से वसुंधरा के पास आया और उसे नासमझी से देखते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम केवल 3 दिन तक इस मेंशन में काम करेंगे? वीर का सवाल सुनकर वसुंधरा एक पल के लिए झेंप गई, फिर उसने ठंडी हंसी हंसते हुए सिर हिलाया और एकदम से बोली, तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। तू देख, मैं 3 दिनों के अंदर ऐसा कुछ करूंगी कि ये सब लोग हमें नौकर बनाने पर अफसोस करेंगे। वसुंधरा की ये बातें वीर को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। वो खुद नानी के खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से नानी माँ ने उसका भांडा फोड़ा था वो बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी। उसने सोचा कि सबसे पहले उसे नानी माँ को यहाँ से बाहर भगाना होगा, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेंगी वो उनके प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देंगी। वहीं वसुंधरा भी अपने मन में अलग ही तरह की चाल चली रही थी। इतनी जल्दी भला वो ऐसे कैसे सुधार कर सकती हैं? लेकिन अभी तो उसे एक और चुनौती का सामना करना था, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। फिलहाल अगली सुबह सभी लोग सोकर उठे, लेकिन अरमान सिंघानिया केवल 1-2 घंटे की नींद लेकर ही उठ चुका था। वहीं आस्था अभी भी थकी हुई सो रही थी और अंश जल्दी उठकर आस्था के पास खेलने लग गया। अरमान ने सोचा कि उसे एक बार जाकर देखना चाहिए कि ये लड़की क्या कर रही है। ये सोचते हुए वो बिना झिझके आस्था के कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि अंश पहले ही उठ चुका है, लेकिन आस्था अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अरमान ने सोचा, क्या मैं इसे उठाने की कोशिश करूं? नहीं, ये शायद ठीक नहीं होगा।
लेकिन तभी अंश ने अपने पिता की गोद में पहुंचकर जोर जोर से किलकारी मारनी शुरू कर दी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अरमान के चेहरे को छूना शुरू कर दिया। अंश का स्पर्श अरमान के दिल को अजीब ही तरह का सुकून दे रहा था। वो शांत मन से यही सोच रहा था, ये क्या है, ये कैसा स्पर्श है जिससे मुझे इतना सुकून मिल रहा है, और ऊपर से जब ये लड़की मेरे सामने आती है मेरे दिल की हालत इतनी अजीब क्यों हो जाती है। अरमान अपने आप में ही खुद से जंग लड़ रहा था, लेकिन वो भला इस तरह से एक मामूली लड़की को अपने दिल और दिमाग पर हावी होने कैसे दे सकता था। इसीलिए उसने एक गहरी सांस ली और फटाफट आस्था को उठाने की कोशिश की। आस्था ने अभी तक वही रात वाली साड़ी पहनी हुई थी जिसमें सुबह की धूप की किरणें खिड़की से आकर उसकी गोरी कमर पर पड़ रही थीं। ये देखकर अरमान और परेशान हो गया और अचानक उसका शरीर खुद बहुत सख्त सा महसूस होने लगा। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने जल्दी से अंश को संभालकर पास रखी झूले पर लेटाया और फटाफट कमरे से बाहर निकल गया। अरमान के जाने के बाद आस्था एकदम से उठकर बैठ गई। जब उसने देखा था कि अरमान अंश को गोद में ले रहा है तो मौका देखकर उसने तुरंत अपनी कमर का पल्लू थोड़ा सरका दिया, जिसकी वजह से अरमान उसकी कमर साफ साफ देख चुका था। अरमान को पेट जाते हुए देखकर आस्था ने आह भरी और मुस्कुराते हुए बोली, ओह मिस्टर सिंघानिया, और कितना मुझसे दूर रहेंगे, जितना आप मेरे करीब आने के लिए तड़प रहे हैं यकीन जानिए मिस्टर सिंघानिया मैं भी आपके करीब आने के लिए उतना ही तड़प रही हूँ। कहीं ना कहीं आस्था की बातों में जुनून की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल आस्था जल्द ही खड़ी हुई और फटाफट अंश को गोद में लेकर उसे लाड प्यार करने लगी। उसने बचकानी आवाज में अंश से कहा, ओ मेला बच्चा, मम्मा का थोड़ा सा वेट करो, मम्मा अभी आई। क्योंकि अरमान ने अंश को सुरक्षित तरीके से झूले में लिटा दिया था इसीलिए आस्था बेफिक्री होकर वॉशरूम में चली गई। वहीं अंश किलकारी मारते हुए अकेले अकेले खेलने लगा और खिलौनों के साथ वो खुश होकर मुस्कुराता रहा। फिलहाल आस्था जल्द ही रेडी होकर बाहर आ गई। जैसे ही वो नीचे आई उसने देखा कि सभी लोग उठ चुके हैं और वहां गुमसुम बैठे हुए थे। तभी आस्था ने अचानक नोटिस किया कि सभी लोग अपना मुंह लटकाकर बैठे हुए हैं। ये देखते ही आस्था आश्चर्य में पड़ गई और वो ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, क्या हुआ, आप सब इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तभी ध्रुव और आहन ने बताया, कल रात जागरण में हमारी बीवी हमारे कंधे पर सर रखकर सो गई थी। ये बात अरमान भाई को पसंद नहीं आई थी और इसीलिए उन्होंने हमसे बात करने का डिसीजन लिया है। ये बोलने के बाद वे थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। फिर आहन उम्मीद भरी नजरों से आस्था को देखते हुए बोला, आस्था भाभी प्लीज कुछ करो ना, आपको पता है हम सब तो सिर्फ भक्ति के मूड में थे, हमारा कोई और इरादा नहीं था, हमने कोई रोमांस नहीं किया, हम बस आराम से सो गए थे, हमें क्या पता था कि हम अरमान भाई की जानलेवा नजरों में आ जाएंगे, प्लीज भाभी कोई ना कोई रास्ता निकालो, हमें बचा लो, प्लीज प्लीज प्लीज। आहन की इस बात पर आस्था ने गहरी सांस भरकर कहा, पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए और हमें सोचने दीजिए, अब हमें आगे क्या करना है।
चूंकि अभी भी वो हल्की सी नींद में थी, इसीलिए वो पूरी तरह से सिचुएशन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। इसीलिए उसने बेफिक्री से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सबसे पहले जाकर अरमान जी से मिल लीजिए। आस्था की इस बात पर आहान के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और वो ठिठक कर बोला, ओ भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर हम अरमान भाई से मिलने जाएंगे तो वो हमारे सर पर बम फोड़ देंगे।